भाषा परिवर्तन की दिशाएं। भाषा एक परिवर्तनशील सामाजिक संपत्ति है। भाषा में यह परिवर्तन सतत एवं सहज रूप में होता रहता है। जिन देशों में आवागमन के साधन सर्वथा सुलभ हैं और जो देश अत्यंत समृद्ध एवं संपन्न हैं, उन देशों की भाषाएं प्रायः परिवर्तनशील होती हैं। इसके विपरीत जिन देशों में आना जाना सर्वथा कठिन होता है अथवा जहां संचार साधन की ठीक व्यवस्था नहीं होती, जहां की भूमि उर्वरा नहीं होती और जहां मानव जीवन के लिए उपयोगी सामग्री का उपलब्ध होना दुष्कर होता है, वहां की भाषा में परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार सुखद, संपन्न, समृद्ध एवं सर्वसाधन सुलभ देशों की भाषाएं प्रायः परिवर्तनशील होती हैं। भाषाओं में यह परिवर्तन विविध दिशाओं में देखा जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाना, अप्रवणता से प्रवणता की ओर जाना अथवा संयोगात्मकता से व्योगात्मकता की ओर जाना ही भाषा परिवर्तन की दिशाएं कहा जा सकता है। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि भाषा के उक्त परिवर्तन उसकी प्रवृत्ति के द्योतक है, उसकी आंतरिक एवं बाह्य प्रकृति के द्योतक है अथवा भाषा की मनोवृत्ति के परिचायक है। इनसे भाषा परिवर्तन की दिशाओं का बोध नहीं होता। भाषा परिवर्तन की दिशाएं तो वे हैं जिनमें भाषा के आंतरिक एवं बाह्य रूप में परिवर्तन आता है अथवा उसके उच्चारण में परिवर्तन आता है या उसकी ध्वनि में परिवर्तन आता है अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन दिखाई देता है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि भाषा की परिवर्तन की प्रमुख 5 दिशाएं हैं। पहला ध्वनि परिवर्तन, दूसरा शब्द परिवर्तन, तीसरा पद परिवर्तन, चौथा वाक्य परिवर्तन, पांचवा अर्थ परिवर्तन। पहला ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहते हैं। अतः भाषा ध्वनि संकेतों पर निर्भर कर रहती है। प्रायः यह देखा जाता है कि भाषा के ये ध्वनि संकेत बड़े विचित्र रूप में परिवर्तित होते रहते हैं और जिनके परिवर्तन से भाषा भी पर्याप्त मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। भाषा में ध्वनि परिवर्तन के विविध भेद दिखाई देते हैं। जैसे कभी आदि स्वर का लोप हो जाने पर अनाज का नाज ही रह जाता है, मध्य स्वर का लोप हो जाने पर गर्दन को गर्दन अथवा खुरजा को खुरजा कहने लगते हैं, अंत स्वर का लोप हो जाने पर शिला को सिल या निद्रा को नींद कहने लग जाते हैं। ऐसे ही आदि व्यंजन का लोप हो जाने पर स्कंद को कंधा या स्थान को थान कहा करते हैं, मध्य व्यंजन का लोप हो जाने पर कोकिल को कोइल कहने लगते हैं, अंत व्यंजन का लोप हो जाने पर निम्ब को नीम या आम्र को आम कहने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ स्वर एवं व्यंजनों के आगम से स्टेशन को ई स्टेशन, मर्म को मरम, स्वप्न को सपना अथवा ओष्ठ को होठ, समन को सम्मन, राधा कृष्ण को राधा कृष्ण कहने लग जाते हैं। ऐसे ही और भी अनेक प्रकार के ध्वनि परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे लखनऊ को बहुत से लोग नखलऊ कहा करते हैं, सिग्नल को लोग सिंगल कहते हैं, सूर्य को लोग सूरज कहा करते हैं, कंकण को कंगन कहा करते हैं, मुकुट को मौर कहने लगते हैं, नयन को नयन बोलते हैं, बदन को बैन कहते हैं, नदी को नय और वय को वय कहा करते हैं, हस्त को हाथ और मदद को मदत कहते हैं, मैकेंजी को मक्खन जी या एडवांस को अठवांस बोला करते हैं। इस तरह से भाषा में विविध प्रकार के ध्वनि परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरा शब्द परिवर्तन। ध्वनियों के संयोग से शब्द बनता है। जब कई ध्वनियां संयुक्त होकर उच्चरित होती हैं तब शब्द उत्पन्न हो जाता है। अतः जहां ध्वनियों के विविध परिवर्तन भाषा की परिवर्तनशीलता के द्योतक हैं, वहां शब्द परिवर्तन भी भाषा के परिवर्तन संबंधी दिशा को सूचित करते हैं। शब्दों में भी विविध प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे एक समय मातृ, पितृ और भ्रातृ शब्दों का प्रचार था। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते इनके स्थान पर क्रमशः माता पिता और भ्राता का प्रचार हुआ और फिर क्रमशः माँ बाप और भाई का प्रचार हो गया। ऐसे ही पहले संस्कृत में जो अग्नि भक्त दुग्ध सर्प खंड पुत्र अंगुष्ठ आदि शब्द थे, कालांतर में परिवर्तित होते होते हिंदी में आकर क्रमशः आग भात दूध सांप सांड पूत अंगूठा आदि हो गए।